कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। रविवार ये सत्संग कार्यक्रम संडे फिस्ट में आए हुए सभी भक्तों का और अतिथियों का हार्दिक स्वागत। हर रविवार को सुबह 10:30 से 12:30 इस समय में हम रविवार ये सत्संग कार्यक्रम संडे फिस्ट मनाते हैं। तो हम सबको आमंत्रित करते हैं कि आज की तरह हर रविवार को आप इस कार्यक्रम में आइए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए, भाग लीजिए। तो 10:30 से 11 बजे तक हरिनाम संकीर्तन होता है, 11 से 12 बजे तक प्रवचन होता है, 12 से 12:30 बजे तक श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होता है और 12:30 बजे सबके लिए लंच प्रसाद भी होता है। तो हर रविवार को आप इस कार्यक्रम में आ सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो जो भी भक्त दर्शन के लिए खड़े हैं उनसे विनती है कि प्रवचन में बैठ जाइए। यहाँ पे व्यासासन पे श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु आज हमें प्रवचन देने वाले हैं। तो सबसे विनती करते हैं कि कृपया प्रवचन में बैठ जाइए। जो भी प्रभु जी जेंट्स लोग हैं उनसे विनती है कि वे आगे बैठिए, थोड़ा आगे आगे बैठ भी सकते हैं, व्यासासन की तरफ अपना मुँह कीजिए। तो लेडीज है वो पीछे बैठ सकती है, जेंट्स है वो सामने बैठ सकते हैं। तो अभी प्रवचन चालू होगा, 11 से 12 बजे तक प्रवचन होगा, 12 से 12:30 बजे तक श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा और 12:30 बजे सबके लिए लंच प्रसाद भी होगा। तो हम सबसे विनती करते हैं कि कृपया प्रवचन में बैठ जाइए। तो आज हमें प्रवचन देने के लिए उपस्थित है श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु। अभिमन्यु प्राण प्रभु जी बेसिकली उड़ीसा से है। प्रभु जी ने अपना इंजीनियरिंग का बीटेक डिग्री कंप्लीट किया हुआ है। उसके पश्चात इस्कॉन का जो राधा गोपीनाथ मंदिर है इस्कॉन चौपाटी में, वहाँ पे वे पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी के रूप में सेवा प्रदान करने लगे और कुछ ही सालों में वे गोवर्धन इको विलेज गालतरे यहाँ पे शिफ्ट हुए। यहाँ आने के पश्चात प्रभु जी ने अनेकों विभागों में सेवा प्रदान की है, विशेष रूप से स्पिरिचुअल केयर। जो गेस्ट आते हैं यहाँ पे गोवर्धन इको विलेज में उनका वो आध्यात्मिक का ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ प्रभु जी अनेकों गांवों में जाके भी प्रचार करते हैं, विशेष रूप से वाड़ा और कुडुस यहाँ पे जाके हर हफ्ते वे सत्संग कार्यक्रम लेते हैं, वहाँ के युवाओं को प्रेरित करते हैं, साथ ही साथ कांग्रेगेशन को भी मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु जी अनेक धामों में यात्रा भी ले जा चुके हैं भक्तों के साथ। अभी महाराज जी का यात्रा होगा जगन्नाथपुरी में, उसके पश्चात प्रभु जी जो पालघर डिस्ट्रिक्ट के भक्त है उनको जगन्नाथपुरी लेके जाने वाले हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी आज हमें प्रवचन देने के लिए उपस्थित है। तो प्रभु जी का स्वागत करते हैं पारंपरिक रूप में 3 बार हरि बोल बोलते हुए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहे रखो हरे कृष्णा। हाँ हाँ पहले लगाओ पहले फिर लगाओ। सब लोग आगे आके थोड़ा बैठ जाइए और जो लोग खड़े हैं क्या कर रहे हो तुम? लगा ना आपको नहीं जम रहा है? स्विच के ऊपर दबाओ मत ना। आपको खाली ऐसा लगाना है, इसके ऊपर दवा मत। हाँ दवा मत, संभाल के लगा।
हरे
हरे कृष्णा। अभी यहाँ पर भागवत कथा होने वाला है, तो जो लोग आप लोग आए हैं कृपया करके शांति से थोड़ा बैठ जाइए, फिर उसके बाद सबके लिए प्रसादम का व्यवस्था किया गया है कथा के बाद। तो जो लोग भी भागवत कथा सुनना चाहते हैं कृपया करके शांति से बैठ जाइए। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, जय जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, मुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, सब लोग बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. కలియుగ పావన హరినామ సంకీర్తనకి సమవేత భక్త వృందకి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానంజనాశలాకయ చక్షురోన్మిలితం యేన తస్మే శ్రీ గురువే నమః. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. తో ఆప్ సబ్కా స్వాగత్ హై ఆజ్ కి ఇస్ సండే ఫీస్ట్ కార్యక్రమ్ మే. యే చాలు హై, ఏక్ బార్ చెక్ కరో. తో ఆజ్ హమ్ టాపిక్ జో చర్చా కర్నే వాలే హై, కిసీ కో పతా హై ఆజ్ కా క్యా శీర్షక్ హై? आध्यात्मिक जीवन का ABCD. हम लोग स्कूल में ABCD पढ़े रहेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल. तो हम थोड़ा देखेंगे स्पिरिचुअल लाइफ का ABCD क्या है, जो कि बेसिक से स्पिरिचुअलिटी कहीं भी कुछ भी अगर आध्यात्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो जैसे कोई पढ़ाई करना जाता है स्कूल में तो पहली कक्षा में उसको ABCD सिखाते हैं ना, ABCD. बच्चा सीखता है फिर पेरेंट्स को आके बोलता है, पापा बोलते बेटा क्या सीखा है, तो AB, तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं मेरा बेटा ABCD बोल रहा है. तो स्पिरिचुअलिटी का भी ABCD है जो कि हमको सीखना चाहिए बचपन से ही, लेकिन हम नहीं सीख पाते हैं और कभी कभी इतने बड़े भी हो जाते हैं और ABCD पता नहीं रहता स्पिरिचुअलिटी का, जो कि बहुत जरूरी है. हर कोई व्यक्ति को इसका ज्ञान रहना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का ABCD. तो आप लोग रेडी है जानने के लिए एबीसीडी क्या है स्पिरिचुअलिटी का? चलिए तो शुरू करते हैं. पहला ए से शुरू करते हैं. ए फॉर एप्पल. वो बोल रहे हैं फॉर एप्पल. वो बेचारा पढ़ा है स्कूल में ए फॉर प्रभु जी पूछ रहे एप्पल बोला उसने. ठीक है तो स्पिरिचुअलिटी लाइफ का ए फॉर एप्पल नहीं है, ए फॉर एसोसिएशन. ठीक है ए फॉर एसोसिएशन. एसोसिएशन मतलब क्या है? संघ. एसोसिएट करना संघ. जैसे आप लोग अभी संडे के दिन में कितना कुछ करने का आपके पास था ना टाइम, आप मार्केटिंग जाके मार्केटिंग कर सकते थे, कोई सिनेमा देखने के लिए थिएटर जा सकते था, कोई बॉम्बे जा सकते थे, कोई ऐसे घूमने के लिए जा सकते थे. लेकिन आपने कहां पर आए? यहां पर गोवर्धन इको विलेज मंदिर में आए हैं, जो कि यहां पर अब क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा है. ठीक है ना. तो स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिक जीवन में अगर आपको बढ़ना है तो सत्संग बहुत जरूरी है. सभी शास्त्रों में इसको वर्णन किया गया. साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए. सभी शास्त्र में कौन सा भी शास्त्र उठा के पढ़ लीजिए, उस शास्त्र में लिखा गया कि साधु का संग करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए. और साधु का एक क्षण भी कोई करता है तो उससे बहुत फायदा होता है. एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं. एक शिकारी था, शिकारी शिकार करता है जंगल में. तो एक दिन नारद मुनि ऐसे भ्रमण करते करते उस जंगल के तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक चिड़िया को तीर लगाए और फड़फड़ा रहा है. मतलब तीर ऐसा मारा है वो चिड़िया मर भी नहीं रही है और उड़ के जा भी नहीं पा रही है और फड़फड़ा रही है. तो नारद मुनि को बहुत कष्ट लगता है कि ऐसा कौन मारा होगा. और थोड़ा आगे जाते हैं, देखते हैं कि एक खरगोश पड़ा है, उसको भी तीर लगा है, वो भी फटफड़ा रहा है. मतलब तीर ऐसा लगा कि जल्दी नहीं मरेगा, उसको धीरे धीरे खून जा रहा है और बहुत कष्ट में है. और थोड़ा आगे जाते हैं नारद मुनि, तो देखते हैं हिरण गिरा है और उसको गले में तीर लगा है, वो बेचारा भी फटफड़ा रहा है, दौड़ भी नहीं पा रहा है. तो नारद मुनि को बहुत कष्ट होता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जानबूझकर ऐसा तीर मार रहा है कि जानवर मर भी नहीं रहा है और भाग के जा भी नहीं पा रहा है. तो और थोड़ा आगे जाते हैं तो किसको देखते हैं? एक शिकारी को देखते हैं. उसका नाम था मृगारी. तो बोलते हैं प्रणाम नारद मुनि, आज आपका इधर कैसे आना हुआ? तो नारद मुनि बोलते कैसे ही आया इधर. बोले कि आपको क्या चाहिए? आपका शेर का छाल चाहिए क्या बैठ के तपस्या करने का, या हिरन का छाल चाहिए उसके ऊपर बैठ के तपस्या करने का, क्या चाहिए? उसको थोड़ा टाइट करो नॉब जो है ना, हाँ उसको दबाओ थोड़ा, बस आ जाएगा. तो आपको क्या चाहिए, किस लिए आप आए हो? तो नारद मुनि बोलते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए? मुझे तुम इतना कुछ को मारे हो, जानवरों को मारे हो, कि इनके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अगर सचमुच तुम्हें मारने का इच्छा था तो पूरा जानवर को मार देते, आप अधमरा करके उसको क्यों ऐसा छोड़े? तो बोला कि अरे मैं जैसा ट्रेनिंग लिया हूँ मेरे दादा परदादा से, ऐसा मैं कर रहा हूँ. मेरे दादा परदादा लोग सब बोले थे कि ऐसा मारो जानवर को कि वो फड़फड़ाता रहे और उसमें जो आनंद आता है वो तुम्हारा सबसे बड़ा एंजॉयमेंट है. तो बोला कि अरे वाह, क्या तुम्हारा आनंद पाने का क्या तुम्हारा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है. मैं बोला तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होगा? बोला क्या होगा? बोले कि जितने सारे जानवर को तुम मार रहे हो सबको देखो, सब खड़े हैं इधर, तुम्हारा सब बदला लेने के लिए इधर खड़े हैं, और जैसे ही तुम्हारा मृत्यु होगा सब अपना अपना सिंह तुम्हारे तरफ करके खड़े हैं और सब अपना बदला लेंगे. तो बोले कि अरे बाप रे, ये तो बताया नहीं था दादाजी ने. दादाजी ने बताया था तीर मारो और जब फड़फड़ाएंगे तो आनंद लो. तो बोले ये आगे का जो आप बता रहे ये पता नहीं था. तो बोले कि बेटा फ्यूचर बहुत गड़बड़ है, बहुत खतरनाक है. तो बेचारा डर जाता है. बोले बताओ क्या करना है? करना क्या है, तुम्हारा जो धनुष है उसको पहले तोड़ो, फिर मैं आगे बताऊंगा. तो देखो इसका भी विश्वास कितना था नारद मुनि के ऊपर. बेचारा अपना रोटी कपड़ा कमाने का जो एक ही साधन था उसको तोड़ देता है. और फिर नारद मुनि को बोलता है बताइए क्या करना है. तो नारद मुनि बोलते हैं कि देखो आज से क्या करने का, ये माला लेने का और यहाँ पर बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो माला लेके यहाँ पर आपको जप करना है। तो बोला क्या रे, खाली माला लेके जप करूंगा तो थोड़ी कुछ हो जाएगा, काम तो करना पड़ेगा। लोग कभी कभी बोलते ना, अरे प्रभु जी खाली माला लेने से थोड़ी हो जाता है, काम तो करना पड़ेगा ना, बे प्रैक्टिकल। तो ये भी इसरा प्रश्न पूछा कि अरे नारद मुनि जी खाली माला लेने से थोड़ी सब कुछ मिल जाएगा, काम तो करना पड़ेगा। बोले बेटा तू चिंता मत कर, तू माला बस कर जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब कुछ हो जाएगा। बोले पक्का? हाँ पक्का हो जाएगा। तो बोले ठीक है। तो माला लेता है, बैठता है एक जगह पर और जप करना चालू करता है, और खबर धीरे 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 चारों तरफ फैल जाता है और लोगों को पता चलता है इतना बड़ा शिकारी जो कि सुबह शाम जानवर को मारता था, लूट करता था, मर्डर करता था, वो सब कुछ छोड़ के AK-47 छोड़ के हाथ में माला लिया है। तो आपको देखने के लिए थोड़ा इच्छा होता है ना सबको। तो गांव गांव से लोग भर भर के आते थे इसका दर्शन करने के लिए कि वो शिकारी माला लेके बैठे। तो आगे देखते थे बेचारा खाली जप कर रहा है, तो सबको थोड़ा दया आएगा ना, बेचारा कुछ नहीं कर रहा है खाली जप कर रहा है। तो जो भी आते थे, कोई राइस लेके आता था, कोई दाल लेके आता था, कोई सब्जी लेके आता था और फ्रूट्स फल, उसको देखे जाते थे। तो पहला दिन में ही उसका जब शाम होता है सब हो जाता है, पहला दिन का ही टर्न ओवर देखता था, इतना राइस हो गया, इतना दाल हो गया, अन्नकूट हो गया उधर। बोले अरे बापरे इतना तो मैं खा नहीं सकता हूँ, इतना लोग क्यों देखे गए। तो बोला कि क्या करूंगा, तो जितना चाहिए था उतना रखा, बाकी सब दान में बांट दिया। फिर तो बोले कि नारद मुनि ने बराबर बोला था कि अपने आप सब कुछ आने वाला है। और इस तरह उसका दुनिया चलते रहा चलता रहा चलता रहा। और कुछ दिन के बाद नारद मुनि सोचे कि चलो अपने शिष्य को थोड़ा मिलने के लिए जाते हैं। तो नारद मुनि आते हैं, किनके साथ? पर्वत मुनि के साथ आते हैं, दोनों आते हैं। और दोनों जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं और ये देखता है मृगारी की मेरे गुरु आए, इतना एक्साइटेड हो जाता है, दौड़ के आता है मिलने के लिए। और दौड़ के आते ही बीच रास्ते में पता नहीं क्या हो जाता है, रुक जाता है, ब्रेक लगाता है और बैठ जाता है नीचे। तो पर्वत मुनि बोल रहे कि गुरु इधर खड़ा है, चला उधर क्या कर रहा है, दौड़ इधर तो आना चाहिए, बीच रास्ते में क्या कर रहा है। तो नारद मुनि बोलते चलो चल के ही देख लेते हैं। तो जाके जब देखते हैं क्या होता है, बहुत सारे चींटियां जा रहा था रास्ते को पार करके। तो इसको इतना कष्ट हो रहा है कि मेरे पैर किसी चींटी के ऊपर ना आ जाए, तो बैठ के अपने उतरिया से चींटियों को निकाल रहा है। तो नारद मुनि बोलते कि देखो पर्वत मुनि, जो व्यक्ति ऐसा तीर मारता था कि जानवर को फड़फड़ाते हुए मरते देखते हुए उसको आनंद आता था, ये व्यक्ति वही सेम व्यक्ति है। आज एक चींटी के ऊपर पैर रखने के लिए भी डर रहा है कि मेरे वजह से एक चींटी भी ना मरे। तो ये होता है साधु संघ का कृपा, इसीलिए बोला गया है साधु संघ सर्व शास्त्र को है, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि हो जाए, बड़े से बड़ा सिद्धि हो जाता है। वो जो था शिकारी उसका नर्क का द्वारा पूरा खुला था जो काम कर रहा था, लेकिन 2 सेकंड का संग किया साधु के साथ, पूरा नर्क का द्वार चेंज हो गया, स्वर्ग का द्वार, भगवान का द्वार खुल गया। तो इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। लेकिन हम कभी आजकल के जमाने में लोगों को बोलते हैं प्रभु जी थोड़ा सत्संग के लिए आ जाए, अरे प्रभु जी टाइम किधर है, अब किधर सत्संग बुला रहे हैं, ऑफिस सुबह जाता हूँ, शाम को ऑफिस से आता हूँ, फिर न्यूज पढ़ता हूँ, टीवी थोड़ा देखता हूँ, हो गया रात, टाइम किधर है प्रभु जी सब करने के लिए। देखिए टाइम किधर है, लेकिन जिस चीज के लिए जीवन बना है उसको अगर टाइम नहीं देंगे तो क्या फायदा है। हम बहुत सारे नौकरी करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, बड़ा बड़ा गाड़ी खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, इस सब के लिए बहुत टाइम देंगे, लेकिन जब समय आएगा राम राम सत्य है तब कुछ लेके जाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे मर्सिडीज, अरे बहुत मेहनत करके मर्सिडीज खरीदा, इसको चलो लेके चलते हैं ना स्वर्ग, कुछ लेके एक चीज भी लेके नहीं जा सकते। यहां तक कि बैंक में जो करोड़ों का पैसा रहेगा एक पैसा भी लेके नहीं जा सकते। इसलिए जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जब इंडिया आया था ना, इंडिया आके पूरा वर्ल्ड को कॉन्कर करते 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 इंडिया में जब घुसा तो इंडियन में एक मच्छर ने काट के उसको मार दिया, पता है। और जब मर रहा था वैद्य ने बोला कि आपको बचा नहीं सकते आप मर जाएंगे, तो अलेक्जेंडर ग्रेट बोला कि मैं जब मरूंगा ना मेरा 2 हाथ को ऐसा रखना, जब लेके जाएंगे ना तो मेरा 2 हाथ को ऐसा रखना, और जितना देश को मैंने हरा के जो पैसा मेरे तिजोरी में भरा है उस सब पैसा का तिजोरी जो हीरा मोती जो है रोड में डाल देना, रोड में डालना और रोड के ऊपर मेरा दो हाथ को ऐसे करके लेके जाना और जला देना। तो मरते मरते मंत्री बोला, अरे महाराज ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? बोले, नहीं मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं सोचा था कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं, सारा विश्व का मैं राजा हूं, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मैं अभी मर रहा हूं लेकिन कोई भी मुझे बचा नहीं पा रहा है। और जिस धन के लालच में मैं इतना देश देश घूम के इतना पैसा कमाया, आज वो पैसा मेरा जान बचा नहीं पा रहा है, सबको छोड़ के मैं जा रहा हूं, इसलिए सबको रोड में बिखरा दो। और फिर बोले कि हाथ को ऐसा क्यों डाल रहे हैं? कि मैं जब माँ के कोख से जन्म लिया था ना तो खाली हाथ आया था, और आज मैं मर रहा हूं मैं देख रहा हूं फिर खाली हाथ जा रहा हूं, तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे भी। ये मैं सारा दुनिया को दिखाना चाहता हूं, अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना बड़ा ग्रेट होके भी खाली हाथ जा रहा हूं, इसलिए मेरा हाथ ऐसा करके लेके जाना। सोचिए, लेकिन आप लेके जा सकते हैं मृत्यु के बाद भी एक चीज, पता है? वो अलेक्जेंडर को पता नहीं था, मैं आपको बताने वाला हूं, मृत्यु के बाद भी एक ऐसा धन है जो कि आप लेके जा सकते हैं अपने साथ, और उस धन से आप घर खरीद सकते हैं, रहने का सब कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, जो कि परमानेंट प्लेस रहेगा, कभी आपसे हाथ से नहीं जाएगा। कौन सा धन है वो? भगवान का नाम का धन है। भगवान का जब नाम जप करते हैं, भगवान का जब गीता भागवत सुनते हैं, भगवान का जब सेवा करते हैं, ये जो धन है आपका परमानेंट अकाउंट में जमा होता है। हमारा इस बैंक का अकाउंट में जो पैसा जमा करते हैं वो इधर छोड़ के जाएंगे। मैं हाल ही में एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में ऐसा आया था कि पिताजी का देहांत हो गया और उस शमशान भूमि में उसको जला रहे हैं, और उधर ही जलाने के बाद चार बेटे अपने में झगड़ा कर रहे हैं। कितने लोगों ने देखा है वीडियो? बहुत वायरल था वीडियो, घूम रहा था इधर उधर। चार बेटे उधर ही शमशान भूमि में झगड़ा कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, और पिता का चिता जल रहा है बाजू में। देखो, वो सपने में भी सोच नहीं सकेगा कि मेरा बेटे ऐसा झगड़ा करेंगे मेरे प्रॉपर्टी के लिए, जिसके लिए इतना मेहनत किया है, उसी के लिए बेटे सब। और ऐसा नहीं लात मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, पूरा मार धड़ कर रहे हैं पूरा। सो उससे अच्छा है थोड़ा कम पैसा कमाइए, गधे की तरह काम ना करके थोड़ा आराम से काम कीजिए, जितना अपना जीवन आप जी सके उतना पैसा शांति से कमाइए, और बाकी क्या कीजिए, भगवान का भजन कीर्तन में लगाइए। बराबर ना? लोग सोचते कि इतना पैसा कमाऊंगा सात पीढ़ी बैठ के भी खाएगा तो कम नहीं पड़ेगा। अरे सात पीढ़ी क्या यार, अपना पहले देख लो, आगे का पीढ़ी क्या होगा? चार बेटे मार धड़ कर रहे हैं, उनके लिए क्यों पैसा कमाने का? उल्टा पैसा नहीं रहता तो शांति में रहते, रहता ना? शांति में काम करते हो, शांति से पैसा कमाते। इतना पैसा कमाया बाप ने कि सब बेटे अपने दूर को चाकू मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है पैसा के लिए। सो उससे अच्छा है पैसा मत कमाओ उनके लिए। तो मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अपना जो आध्यात्मिक जीवन के लिए लोग बोलते हैं कि समय नहीं है, ये एक भ्रम है। समय बहुत है, लेकिन हम गलत प्रकार से समय को बिताते हैं। लोगों को मैं पूछ रहा था, एक जगह पर सर्वे किया गया कि आजकल लोग स्क्रीन टाइम क्या है, मतलब मोबाइल कितना टाइम देखते हैं, तो एवरेज आया कि 6 से 7 घंटा लोग मोबाइल में देखते हैं। आलतू फालतू चीज रहता है ना, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम, ये सब 6-7 घंटा देखते हैं लोगों। सोचो 6-7 घंटा, और यहाँ प्रवचन में बुलाते हैं आधा घंटा बैठने के लिए पेशेंस नहीं रहता है, बोलते हैं अरे क्या पका रहे हैं साधु जी यहाँ पर। अरे यही सच है जो कि आगे आने वाला है, बाकी सब इधर छोड़ के जाएंगे, बाकी जिधर आगे जाने वाला है उसके बारे में सुनने के लिए समय नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो यही चीज जो रहता है हम सत्संग में सुनते हैं, इसलिए बोला गया साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर क्या है? बी फॉर हम पढ़ते हैं बॉल, राइट? बच्चे लोग बोल रहे हैं अभी क्या बोलूं कि नहीं, तो मुझे निकल। बी फॉर बॉल, लेकिन यहां पर बी फॉर क्या है? बुक्स। ठीक है, देखिए किसी भी चीज को अगर आपको जानना है तो आपको पुस्तक पढ़ना पड़ता है। यहां तक कि बोला जाता है कि जो टेररिस्ट लोग रहते हैं ना, उनको भी कैसे बम फोड़ना है उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, उनका भी पुस्तक रहता है, पता है? वो लोग पुस्तक पढ़ते हैं कैसे बम फोड़ेंगे, कैसे प्लेन को कैसे हाईजैक करेंगे, सब कुछ उनको ट्रेन किया जाता है। लेकिन हम जब आध्यात्मिक का कथा करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी हमको सब पता है, वही राम कृष्ण सब पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। अरे बाबा है, आपको आध्यात्मिक जो है ये एक विज्ञान है, अगर इसको समझना है तो इसके लिए भी आपको पुस्तक पढ़ना है। मैं कभी कभी पूछता हूं कि जो हमारे सनातन धर्मी है वो हमारा जो बेसिक पुस्तक क्या है, कौन सा हमको पढ़ना चाहिए, सबसे हमारा जो सबके सबसे बेस कॉमन पुस्तक हमारे लिए क्या है, भगवद गीता, ठीक है ना, गीता। तो गीता एक बार मैं वितरण कर रहा था तो एक व्यक्ति मुझे बोला कि अरे महाराज मेरे पास गीता है। बोला गीता है, पढ़ रहे हैं गीता? बोला हाँ, घर आपसे ही लिया था, हरे कृष्ण वालों से लिया था, 2 साल पहले लिया था। बोला अरे 2 साल पहले लिया था तो पढ़ के तो अभी हो गया होगा आधा बुक। बोले आ नहीं, मैंने क्या क्या ना प्रभु जी, मैंने पुस्तक लिया था, उसको लिया और फिर मैंने लाल कपड़े में उसको लपेटा है और भगवान के सामने रखा है, हर रोज अगरबत्ती घुमाता हूँ 3 बार। मतलब अरे वाह, 3 बार हर रोज घुमाता हूँ। बोला बहुत अच्छा कर रहे हैं, 3 बार घुमा रहे हैं, कभी उसको खोल के भी पढ़ा क्या? बोले नहीं नहीं खोल के अभी अगरबत्ती बस पूजा कर। तो गीता जो है अगरबत्ती में पूजा करने के लिए गीता नहीं है, भगवान को अगरबत्ती दिखाई, गीता का पूजा किया जाता है गीता को पढ़ के। अगरबत्ती दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप उनको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वो लाल कपड़ा खोल के पढ़िए भी, नहीं तो क्या पता वो लाल कपड़ा ही रहेगा अंदर, क्या पता नहीं। तो खोल के गीता को पढ़ना चाहिए। और कोई कोई बोलता है अरे महाराज गीता को घर में रहेंगे ना मेरे वो अलाउ नहीं करती है। मैं बोला क्या हो गया, ये सब मैं बता रहा हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कैसे लोग आते हैं। बोला क्या हो गया, क्यों अलाउ नहीं करती है? पता नहीं, वो बोलती कि घर में लेके आएंगे ना झगड़ा होगा, ऐसे ही बहुत झगड़ा हो रहा है, वो महाभारत को घर में मत लेके आओ। मैं बोला क्या, अरे और कुछ काम नहीं क्या भगवद गीता का, आपका घर में जाएंगे तो झगड़ा करेंगे। अरे झगड़ा हो रहा होगा तो झगड़ा शांत हो जाएगा। गीता जो है मनुष्य को अपने धर्म के बारे में बताता है। देखो क्या क्या अंधविश्वास लोगों के मन में रहता है, गीता को अगर घर में रखा तो घर में महाभारत हो जाएगा। बोले और किधर, कृष्ण को काम नहीं का आपके घर में महाभारत करने के लिए आएंगे? उल्टा घर में आपका अगर महाभारत चल रहा होगा तो शांत हो जाएगा, समाधान मिल जाएगा अगर गीता पढ़ेंगे सब लोग। तो जिस प्रकार अर्जुन को समाधान मिला कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मोह्यते। जिस प्रकार मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के अंदर मैं आत्मा हूं, ये आत्मज्ञान कहां से मिलेगा? भगवत गीता से मिलेगा। भगवत गीता में कृष्ण बोलते कि मैं कौन हूं, भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं। लोगों को बेसिक, कितने लोगों को पता है भगवत गीता में कितने अध्याय हाथ उठाई देखिए, कितने लोगों को पता है भगवत गीता में कितने अध्याय अभी खुद देख लिए। और हम लोग कौन से धर्म से बिलोंग्स करते हैं, हिंदू धर्म, राइट, सनातन धर्म। हमको पता नहीं हमारे गीता में कितने अध्याय, सोच माता जी कितने हाथ उठाए हैं, तभी तक हाथ उठाए, बोलिए। 18 अध्याय, वेरी गुड, 18, उनके लिए ताली बजाइए, आंसर करेक्ट बोले। तो देखिए ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है। हमारा धर्म ग्रंथ जो कि सारा 4 वेदों का जो सार है वो हमको पता नहीं कि कितना अध्याय है उसमें। किसी मुसलमान को बोलो वो बोलता है गीता में तुम्हारा 18 अध्याय, उसको पता रहता है। हर मुसलमान को देखो, बच्चे बचपन से जाके कुरान पढ़ता है और उसको कुरान का श्लोक भी कंठस्थ रहता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा को सिखाएंगे, अरे लोग क्या बोलेंगे यार, तुम्हारा बच्चा पंडित बन गया क्या, ये क्या पढ़ रहा है, गीता भागवत श्लोक पढ़ रहा है, तो लोग बोलेंगे कि अरे अनपढ़ गंवार है कुछ। लोग ऐसा सोचते हैं, अरे उसको अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजो, कॉन्वेंट स्कूल में भेजो, 2-3 अक्षर अंग्रेजी बोलेगा, ये गीता भागवत तो छोड़ो क्या है, बाद में अंग्रेजी सीखेगा, कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा, बड़ा नौकरी करेगा, फिर देखा है बाद में पापा मम्मी को ओल्ड एज होम में भेज देता है, है? बोलता है कि पापा आपसे, आपके पास हम नहीं रह सकते, हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, आप थोड़ा अलग रहिए, बहुत वेस्टर्न हो जाता है। फिर देखा है, हम एक बार ओल्ड एज होम में गए थे, वहां पर रियल ओल्ड एज होम में गए थे, तो वहां पर बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं, उनके पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन उनके साथ बात करने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई लोग नहीं है। बच्चा किधर है, एक बच्चा अमेरिका में है बोल रहा है, दूसरा बच्चा लंदन में है बोल रहा है, और इधर बाप माँ कहाँ है, ओल्ड एज होम में है। तो बोलते तो हम जाके गए थे, थोड़ा कीर्तन किए, थोड़ा प्रवचन किए और थोड़ा बातचीत करके आ रहे थे, तो बोले कि प्रभु जी हमको बहुत अच्छा लगा। बोले क्या अच्छा लगा आपको?
बोले कि बहुत सारा ट्रस्ट लोग आते हैं और बहुत सारा दान करके जाते हैं, कोई किताब देता है, कोई टीवी देता है, कोई कैरम बोर्ड देता है, वो सब देके जाते हैं, लेकिन कोई बैठ के बात नहीं करता है। आप लोग ने 4-5 घंटा दिया, बोले सब लोग आते हैं आधे घंटे में आते हैं, देते हैं और फोटो खींच लेते हैं और भाग जाते हैं आधे घंटे में, कोई आधे घंटे से ज्यादा ही नहीं रहता है। आपने 4-5 घंटा रह के हमारे साथ बात किया, कैसे हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कि बहुत अच्छा लगा। हमारे बेटे लोग भी इतना बात नहीं करते, समझ रहे ना। तो ये क्या है, ये है संस्कृति। बच्चों को अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो बच्चा आपको भी नहीं देखने वाला है, दूसरों को तो छोड़ दीजिए। तो संस्कार बहुत जरूरी है, और वही संस्कार मिलता है, किससे मिलता है, गीता भागवत से मिलता है। कोई भी कॉन्वेंट स्कूल में जाए, कोई भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाए, कोई आपको संस्कार नहीं सिखाएगा। वो सिखाएंगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी सिखाएंगे, कैसे अंग्रेजी बोलना है, कैसे अच्छा जॉब मिलना है, कैसे पैकेज कमाना है, 5 डिजिट का सैलरी कमाना है, ये सब सिखाएंगे आपको, ठीक है ना, सूट बूट कैसे पहनना है सब, कोई संस्कार नहीं सिखाएगा। ये संस्कार मिलता है हमारा संस्कृति गीता भागवत से, जो कि हर पापा मम्मी, हर पिताजी माताजी का ये सबसे बड़ा दायित्व रहता है, पढ़ाना। दूसरा है, पहला संस्कार देना। अगर संस्कार नहीं दिए, खाली पढ़ाए, तो क्या फायदा है। आपको पता है टेररिस्ट लोग भी हैं, पता है डॉक्टर टेररिस्ट भी है। आप सुनो, ऐसा क्या है प्रभु जी, हैं पीएचडी साइंटिस्ट टेररिस्ट भी हैं, इंजीनियर टेररिस्ट भी हैं, खुद बॉम्ब्स बनाते हैं, पता है, और दूसरों को मारने के लिए बनाते हैं। तो उन लोगों ने अच्छा पढ़ाई किया ना, अच्छा कॉलेज में अच्छा पढ़ाई किया, सब कुछ किया, फिर भी गलत रास्ते में क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि संस्कार नहीं है। तो संस्कार बहुत, मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि बिल्डिंग अगर बनाना है, सबसे पहला अगर सिविल इंजीनियर रहेगा दिमाग वाला, क्या किसके ऊपर ज्यादा गौर देगा, फाउंडेशन के ऊपर गौर देगा। हालांकि वो दिखता नहीं है बाहर, फिर भी बिल्डिंग का सबसे बड़ा वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिल्डिंग अगर 50 माला बनाना है तो 10 माला नीचे जाना पड़ता है, फाउंडेशन में बहुत खर्चा करना पड़ता है। कोई बोलेगा अरे प्रभु जी क्या है, कौन दिख रहा है, थोड़ा सस्ता में कर देते ना, कम कर देते, कर देंगे कम, बिल्डिंग खड़ा भी कर देंगे, लेकिन बड़ा अर्थक्वेक आएगा, साइक्लोन आएगा, क्या होगा, पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा, धड़ाम से गिरेगा। आज ऐसा ही हो रहा है ना कुछ कुछ जीवन में, देखिए कोई डॉक्टर है, कोई मैनेजर है, थोड़ा कुछ झगड़ा हुआ, स्ट्रेस हुआ, सुइसाइड कर दिया, कोई कोई जहर खा लिया, कोई बिल्डिंग से जंप कर लिया, क्यों हो रहा है सब। ऑल आर एजुकेटेड पर्सन, स्टिल दे आर कमिटिंग सुइसाइड, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो फाउंडेशन, संस्कार नहीं है, नीचे से पकड़ कुछ नहीं है, खोखला है, बाहर से दिख रहा है। बड़ा बड़ा कंपनी के सीईओ करते हैं सुइसाइड, पता है, जिसके नीचे 10-10 हजार एम्प्लॉय जॉब करते हैं, जो कि इतना बड़े लीडर हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन है, लाइफ खाली है। तो ये जो चीज रहता है, हमारा जो संस्कृति है, गीता भागवत हमको सिखाता है। इसलिए हर कोई पेरेंट को, इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, कौमारम आचरते प्राज्ञम। बचपन से 5 साल का जब आयु हो जाता ना बच्चा, 5 साल का आयु से उसको गीता भागवत सीखना चाहिए। अब बोलता है तो खेलने कूदने, 5 साल का आयु से उसका बुद्धि काम करना चालू कर देता है। अगर उसको अच्छा चीज नहीं सिखाएंगे, वो बुरा चीज सीखेगा, और आजकल के जमाने तो और फास्ट सीखेगा। मैं एक घर में गया था, बच्चा 1 साल कुछ महीना था, तो उसका पापा मुझे बोल रहा कि प्रभु जी आओ ना देखो। बोले क्या, तो बच्चे के हाथ में एक स्मार्टफोन दिया है, बोले देखो मेरे बेटा यूट्यूब खोल के चला लेता है वीडियो, देखो देखो, और बराबर वो दबा रहा है बटन और वीडियो चालू कर रहा है और ऐसा ऐसा कर रहा है। मैं बोला वाह क्या सिखाया आपने, यूट्यूब चलाना सिखाया, बहुत अच्छा, कल को और कुछ चलाएगा सीखेगा उसके अंदर। और आप तो ऑफिस जाएंगे, हाथ में दिया है मोबाइल, सब कुछ चला के दिखेगा, सब कचरा इधर ही भर के रखेगा। मैं बोला उसको कुछ भगवान का मंत्र उच्चारण करना सिखाओ, भगवान का दर्शन करना सिखाओ, करताल बजाना सिखाओ, ये सब छोड़ के तुम यूट्यूब चलाना सिखा रहे हो। और उसमें क्या है, वो प्राउड फील कर रहा है कि मेरा बेटा चला रहा है, कल आपको ही चला के भगा देगा घर के बाहर। मैं बोला देखिए ये सबसे बड़ा चीज है बच्चों को संस्कार देना। और ये बच्चे जब 5 साल से 10 साल के आयु में रहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे रहते हैं, वो ब्लैंक स्लेट रहता है ना, खाली बोर्ड है ना, खाली बोर्ड, बोर्ड में जैसे लिखेंगे वैसे लिख सकते हैं। ये टाइम में बच्चा का जो ब्रेन रहता है ब्लैंक रहता है, अब जैसा संस्कार देते हैं वैसा जाता है, लेकिन हम ज्यादा टाइम उसमें गौर नहीं करते, छोड़ देते हैं, बोर कर रहा है, रो रहा है, चलो हाथ में मोबाइल दे दो, बोर कर रहा है टीवी लागू चालू कर दो, बिठा दो उसको, चलो अपना टाइम बच गया। एक बार एक घर में गया था हमारे, तो माता जी बोल रही, प्रभु जी मेरा बच्चा हमेशा टीवी देखते रहता है, फिल्म देखते रहता है, 3-3 घंटा देखते रहता है, उसको कुछ करो ना प्रभु जी, चेंज कर दो उसको, टीवी कम देखेगा, पढ़ाई करेगा। मैं बोला अच्छा अच्छा, बोला ठीक है माता जी। माता जी आप क्या करते हैं, आप कितना घंटा टीवी देखते हैं, मैंने उनको पूछा। तो बोले मैं भी थोड़ा देखती हूँ, सीरियल देखती हूँ, ये वो देखती हूँ, लगभग मैं भी 2-2.5 घंटा देखती हूँ। बोला अच्छा अच्छा, अभी मेरे पास उपाय है, बताऊँ? बोले कि क्या बताओ प्रभु जी। पहला चीज माता जी, मैं बोला कि आप ना अपना टीवी देखना बंद कर दो, ठीक है? तो आप अपना टीवी देखना बंद कर दो, ऑटोमेटिकली उसका भी बंद हो जाएगा। बोला टेंशन में आ गया पूरा, अरे ये तो बंद करना पड़ेगा मुझे। बोला आप चाहते हो कि बेटा ना देखे लेकिन आप देखेंगे। बोला देखो पता है बच्चा जो रहता है ना सबसे अच्छा से कैसे सीखता है, हम गाली करके कभी सिखाते हैं, बोल के सिखाते हैं, वो जितना इफेक्ट नहीं करता है, बच्चा देख के सीखता है। साइंस ने भी प्रूफ किया है, 5-6-7 साल का जो बच्चा रहता है वो मम्मी पापा को ऑब्जर्व करता रहता है कि वो कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सब उसका माइंड में बैठते रहता है, ढांचा बनते रहता है। तो अगर आप 2 घंटा देख रहे हो तो उसको भी लग रहा है कि टीवी देखना चाहिए, वो भी देख रहा है उसको जो पसंद है। तो पहले आप बंद करो, फिर हम बोलेंगे उसको नहीं देखने का। तो फिर माता जी बोले ठीक है प्रभु जी, मैं थोड़ा सोचती हूँ, थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो कभी कभी हम लगते हैं कि अरे मेरा बेटा को ठीक कर दो, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यदि यदि आचरते श्रेष्ठ, गीता में कृष्ण खुद बोलते हैं ना, जैसे जैसे जो बड़े लोग करते हैं उस आचरण को नीचे के लोग फॉलो करते हैं। एक पेरेंट्स के ऊपर लागू होता है, टीचर के ऊपर लागू होता है, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर लागू होता है, देश के मंत्रियों के ऊपर लागू होता है, सबके ऊपर लागू होते हैं। हर कोई जगह पर हम कोई ना कोई एक छोटा लीडर है, ठीक है ना? इसीलिए पता कैसे चलेगा, जब पुस्तकों को पढ़ेंगे, हमारा गीता भागवत को पढ़ेंगे, तब जाके तो हम कुछ कर सकते हैं संसार में। हमारा महाराष्ट्र में सबसे बड़े लीडर लोग आज भी मानते हैं शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितना बड़ा, कितना कुछ उन्होंने महाराष्ट्र के लिए किया। देखिए उनके जीवन में संस्कार कैसा था, जब वो कल्याण के राजा को परास्त किए थे तो कल्याण के राजा का जो रानी थी, क्वीन थी, उनको लेके आए थे उनको भेंट में देने के लिए कि इनका आप इंद्रिय भोग करो। तो शिवाजी महाराज क्या क्या पता है, उन्होंने बोले कि ये तो मेरे माँ के समान है, और उनको ससम्मान भेज दिए। देखो इतना बड़ा राजा होने के कारण होते हुए भी इतना स्ट्रांग संस्कार कैसे मिला था उनको, उसके पीछे क्या राज था? उनके माँ जीजा माता जो थे, बचपन में शिवाजी महाराज जब रात को सोते थे तो उनके माँ हर रोज एक रामायण महाभारत से कहानी सुनाती थी, एवरीडे वन स्टोरी फ्रॉम द स्क्रिप्चर। वो सुन बिना सुने वो सोते नहीं थे बचपन में, सोचो कैसा संस्कार। देखो हर रोज एक राम कथा या कृष्ण लीला सुनते थे और सोते थे, और उसके ऊपर मनन करते थे, जिसके कारण फाउंडेशन इतना स्ट्रांग बना, ताकि वो इतना कुछ कर पाए देश के लिए। उसके लिए सेल्फलेस बनना पड़ेगा ना, खुद के लिए सोचेंगे तो देश के लिए क्या करेंगे। तो इसीलिए ये संस्कार बहुत जरूरी है, और ये आपको पता चलता है गीता भागवत रामायण से पता चलता है, ठीक है? ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट, कैट नहीं, सी फॉर क्या है, चैंटिंग, ठीक है? क्या चैंट करेंगे, बॉलीवुड गाना चैंटिंग क्या करेंगे हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम को हमको जप करना है। देखिए ये साउंड वाइब्रेशन में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। एक अफ्रीका में एक गांव है जहां पर उनको अगर एक पेड़ को मारना होता है, वो कैसे मारते हैं देखिए उनका टैक्टिक्स क्या है। तो गांव के जितने सारे कबीले के लोग आ जाते हैं, उस पेड़ को घेर लेते हैं, ठीक है? और सब लोग घेर के गाली मारना चालू करते हैं, जितना गाली है सब गाली करते हैं, गाली करते हैं, गाली करते हैं, गाली करते हैं, 2 घंटा गाली करके चले जाते हैं। फिर अगले दिन आते हैं, फिर 1 घंटा गाली करके जाते हैं। 1-2 हफ्ते में वो पेड़, इतना बड़ा भरकम पेड़, सूख जाता है और गिर जाता है। ये होता है रियल लाइफ में, करते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है, ये जो नेगेटिव साउंड वाइब्रेशन है ना, कितना इम्पैक्ट करता है। हम किसी को कुछ बुरा भला बोल देते हैं, हमको बोल दिया, लेकिन बोलते हैं ना, एक बार जो कुछ बोल दिया बाण की तरह निकल गया आपके मुंह से, तो उसका सीना को चीर देता है, कष्ट लगता है ना, कोई अगर बुरा कुछ बोलता है पेन होता है। तो साउंड में बहुत पावर है, उसी प्रकार पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन अगर हम करेंगे तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, साउंड एक ऐसा चीज है, बोलते हैं, साइंस भी बोलता है, मरते दम तक व्यक्ति का सबसे आखिरी में जो इंद्रियां काम करता है वो रहता है कान। देखो, जब व्यक्ति मर रहा है तो सोया रहता है, हाथ पैर तो सुन हो जाता है, आंख तो पहले ही बंद हो जाता है, खाना तो बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन कान में सुनाई देता है। इसलिए मरते वक्त के कान में हम भगवान का कीर्तन सुनाते हैं, कुछ बोलते हैं, ये सबसे लास्ट तक काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि भगवान ने रखे ताकि राम राम का नाम तो कुछ बोलेगा, लेकिन फुर्सत नहीं मिलता है। लोगों को बोलते हैं, अरे भगवान का नाम लो, बट टाइम नहीं है प्रभु जी। और मर जाने के बाद सब बोलते हैं राम राम सत्य राम राम, जिंदा था कभी बोला नहीं राम राम सत्य, मर गया तो उसको बोल रहे राम राम सत्य। अरे जिंदा है तो एक बार बोल दो, एक बार भी बोल दिया है उसका बहुत लाभ है। श्रीमद भागवत पुराण में एक बहुत सारे ऐसा कथाएं आता है, आप सुनेंगे छठा स्कंद में जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि इतने सारे लोग नर्क जा रहे हैं और नर्क में इतना सारा कष्ट मिल रहा है, हम यहाँ पर कबाब का हड्डी खा रहे हैं और नाक में हमको कबाब का हड्डी बना रहे हैं, तेल में पकाते हैं, पता है? आप सुनेंगे तो डर जाएंगे। पांचवा अध्याय का भागवत पुराण में पांचवा स्कंद का आखिरी 28वां श्लोक पढ़िए, तो वहां पर बोला गया एक एक पाप के लिए एक एक नर्क है। तो परीक्षित महाराज जब सुनते हैं तो डर जाते, बोलते कि अरे सुखदेव गोस्वामी कुछ तो रास्ता बताओ, इसमें तो तेल में पूरा इसका पकोड़ा बना दिया, उल्टा छान दिया पूरा, बेचारा कितना कष्ट मिल रहा है, कुछ तो रास्ता बताओ इसमें भागने का। तो पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि रास्ता है, बहुत सरल रास्ता है, छठा स्कंद में शुरू करते हैं अजामिल उपाख्यान में। बोले कि ये अजामिल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन वैश्य का संग करते हुए सभी प्रकार के पाप उसने किया है? और घर में उस वैश्य को लेके रखा तो अपना ब्राह्मण पत्नी तो ऑब्जेक्शन करेगी ना, तो उसको घर से निकाल दिया, सोचो, और वेश्या को घर में रखा, पापा मम्मी भी ऑब्जेक्शन करेंगे, बुढ़ा बुढ़ी थे उनको भी घर से निकाल दिया। सोचो व्यक्ति कामुक जब होता है तो कितने नीचे गिर जाता है, और उसके साथ इंद्रिय भोग करने लगा, ऐसा दिन उसको निकलता रहा। ये बहुत फेमस स्टोरी है, अजामिल का स्टोरी हर पुराण में आपको सुनने को मिलेगा। और करते 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 उसके कोख में एक बच्चा का जन्म देता है, बच्चा जन्म होता है छोटा सा। और एक दिन क्या होता है, बहुत सारे साधु आते हैं उसके घर में, भिक्षाम दे ये नहीं रहता है, तो पत्नी दरवाजा खोलती है तो देखती इतने सारे साधु हैं, अपने हाथ से कैसे दूं। पत्नी बोलती कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, मैं नहीं दे सकता कुछ, क्षमा कीजिए। तो बोलते कि अरे माता, ये बच्चा किसका है? बच्चा खेल रहा था। तो बोला मेरा बच्चा है। क्या नाम है उसका? नाम तो कुछ रखा नहीं है। चलो इसका नाम रख दो, क्या नारायण इसका नाम रख दो। साधु देखो, साधु आते हैं ना कुछ अच्छा करके जाते हैं और चले जाते हैं वो लोग। फिर अंतकाल आ गया इसका, अजामिल का टाइम आ गया, अभी इतना पाप भर भर के क्या था, डकैती चोरी मर्डर रेप सब किया था। तो उसको लेने के लिए मामा लोग आ गए, कौन आए? यमदूत आ गए। तीन यमदूत आते हैं लेने के लिए और उसका आत्मा को पकड़ के खींचते हैं। ये बेचारा अपना डर गया, पहली बार देखा ऐसा हरर सो लाइव, हर भूत का फिल्म देखते हैं ना, लाइव देखा, डर गया बेचारा। अभी डर जाते तो व्यक्ति क्या करता है, जिससे ज्यादा प्रेम करता है उसको बुलाते हैं ना, कुछ गिर रहे कुछ हो रहा है तो आई गो बोलते हैं ना, माँ को याद करते हैं क्योंकि माँ के साथ ज्यादा आसक्ति रहता है। तो इसका सबसे छोटा बच्चा के साथ उसका सबसे ज्यादा आसक्ति था, तो वो उधर ही खेल रहा था और उसको ही बुलाता है, क्या करता है, नारायण बुलाता है, चित्कार करता है। और जैसे ही नारायण चार शब्द बुलाता है, उसी क्षण चार विष्णुदूत वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और विष्णुदूत बोलते हैं यमदूत को, इसको छोड़ दो। बोले छोड़ दो? बोले कि ऐसा एक पाप जो कि हमारा लॉ बुक में नहीं है, जो इसने किया नहीं है, भर भर के सब किया है, इसको तो पकोड़ा करने वाले हैं अभी लेके, हमने सोच भी लिया क्या क्या करने वाले हैं। तो विष्णुदूत बोले कि हमने बोला ना छोड़ दो, तो थोड़ा अभी टोन चेंज हो जाता तो पता चलता ना व्यक्ति सामने कौन खड़ा है। तो उनके हाथ में क्या है, शंख चक्र गदा पद्म। तो अभी बातचीत से पता चल जाता है कौन व्यक्ति कितना भारी है ना, अभी जो फाइटर उनको पता चल जाता है। तो यमदूत बोले कि इनके साथ फाइट करके कुछ मतलब नहीं है, ये हमसे ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं, छोड़ देते हैं, फिर फाइट तो करेंगे, फिर अपना हड्डी पर इसलिए एक हो जाएगा। छोड़ के सीधा सीधा चले जाते हैं और यमराज को बोलते कि यमराज क्या हो गया, आपके राज्य में पहली बार कोई हमको परास्त किया। बोले अरे आपको कौन परास्त कर सकता है, अरे पता नहीं कैसे दिख रहे थे, तिलक लगाए थे, तुलसी माला था गले में, शंकर चक्र गदा पद्म हाथ में था। बोले अरे बाप रे, लड़ाई नहीं किया ना? नहीं 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 लड़ाई, अच्छा हुआ लड़ाई नहीं किया, नहीं तो हाथ पैर उधर ही तुम्हारा टूट जाता। अरे बाबा मैं भगवान नहीं हूं, मेरे ऊपर भी एक भगवान है और मेरे भगवान कृष्ण है, विष्णु है, और उनके दूत हैं विष्णु दूत, उनके साथ कभी भी पंगा नहीं लगने का। लेकिन वो ठीक है, एक चीज बताओ, इसने तो भर भर के पाप किया था, लेकिन वो तो हमारा कस्टडी का था ना, उसको कैसे लेके गए, क्या हुआ था लास्ट सीन? बोले लास्ट में मरने ही वाला था, पता नहीं क्या नारायण एक बार बोल दिया। नारायण बोला? हाँ, अरे नारायण बोला तो वो तुम्हारा कस्टडी से बाहर हो गया। कभी कभी होता ना इस एरिया में क्राइम होता है, तो कभी कभी आप अगर पुलिस को बोलेंगे तो बोले कि वो हमारा एरिया में नहीं जाता है, वो पुलिस स्टेशन में बोलो जाको, हम नहीं जा सकते उधर बोलेंगे, तो बोले कि ये हमारा कस्टडी में आता नहीं है, ये नारायण बोला तो विष्णु का कस्टडी में चला गया, उसके पास जाने का ही नहीं है। वो जिसलिए बोलते ना, जिसके गले में तुलसी माला, माथे में तिलक, मुंह में भगवान राम का नाम, उसके पास यमदूत उसके परछाई भी नहीं देखते हैं। समझे? हम लोग तिलक लगाने के लिए शर्माते हैं, क्या तिलक क्या लगा रहा है, गंवारा सोचेंगे सब, गांव का आदमी सोचेंगे, मिठा तो तिलक मॉडर्न मैन, कम ऑन मॉडर्न रहने का, तिलक तिलक क्या लगाने का। तो बोला जाता है शास्त्र में, तिलक जिसका माथे में नहीं है, माथा क्या है, शमशान है, क्रिमेटोरियम देखा है, क्रिमेटोरियम, माथे को शमशान बोलते हैं। हर माथे में तिलक रहना चाहिए। शरीर क्या है, शरीर भगवान का मंदिर है और उस शरीर में भगवान निवास करते हैं। जैसे मंदिर में भगवान निवास करते हैं तो मंदिर को कितना सुंदर सजाया ना, तो उसी तरह भगवान जब इस शरीर में निवास करते हैं तो इस शरीर को भी हमको सजाना चाहिए, इसलिए हम सीखा तिलक लगाते हैं। ये तिलक मतलब क्या है, भगवान विष्णु का पैर, दो पैर को रखेंगे तो ऐसा यू जैसा होगा ना, ये तिलक हो गया। और नीचे जो पत्ता क्या है, तुलसी का पत्ता, भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं, इसलिए हर माथे में भगवान कृष्ण का चरण रहना। देखिए अगर यमदूत पास में नहीं आते तिलक, हम व्यक्ति मरने के बाद तिलक लगाते हैं, जिंदा था तो तिलक कभी नहीं लगा, मरने के बाद तिलक लगाते हैं। अरे जिंदा था तो तिलक लगाओ, भगवान के साथ आदान प्रदान होगा। और गले में माला रहना चाहिए, गले में अगर माला रखना है तो ऐसा एक व्यक्ति बोला, अरे प्रभु जी मैं माला रखूंगा और जब नॉनवेज खाऊंगा तो माला निकाल दूंगा, चलेगा ना, और बाद में फिर पहन लूंगा। अरे बाबा तू ही बड़ा चालाक है, भगवान बुद्धू है, भगवान को कुछ पता नहीं चलता है। अरे वो सबसे बड़े चालाक व्यक्ति उधर खड़े हैं, उनको ठगने का प्रयास मत कीजिए। आपको ये भी फायदा चाहिए, भौतिक आनंद भी चाहिए, इंद्रभोग भी करना है और आध्यात्मिक बेनिफिट भी चाहिए, आप ही सबसे बड़े चालाक हो। तो भगवान का तुलसी माला पहनना है तो हमको नॉनवेज छोड़ना पड़ता है, यहाँ तक कि कांदा लहसुन भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो भी तामसिक खाना है। हम बोले तामसिक है क्योंकि राहु को जब वध किए थे मोहिनी अवतार में, राहु ने दो बूंद अमृत पी लिया था, और जब गला काटते हैं सुदर्शन चक्र से तो वो अमृत गले से नीचे गिरता है, दो बूंद उधर से कांदा लहसुन का उत्पन्न होता है। इसलिए कांदा लहसुन में बहुत सारा औषधि गुण भी है, लेकिन उसके तुलना में उसका जो तामसिक गुण है ज्यादा है, क्योंकि अमृत था इसलिए औषधि गुण है, लेकिन गला को टच करके राक्षस का गला को टच किया है इसलिए तामसिक गुण भी भर भर के है। इसलिए देखो नॉनवेज कुछ बनाते हैं उसमें भर भर के कांदा लहसुन डालना पड़ता है, नहीं तो उसका स्मेल आएगा, खा नहीं पाएगा व्यक्ति, तामसिक खाना है। इसलिए भगवान को भोग लगता है तो कांदा लहसुन नहीं डालना चाहिए, और भगवान को भोग लग के ही प्रसाद हमको ग्रहण करना चाहिए, तब जाके हम गले का पट्टा ये तुलसी माला पहन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, जिस प्रकार अजामिल ने नाम लिया। अजामिल ने ना भगवान को नहीं बुलाया था, किसको बुलाया था, बेटे को बुलाया था, करेक्ट, लेकिन भगवान ने बचा दिया ना। अगर आप भगवान को बुलाएंगे तो क्या भगवान नहीं बचाएंगे, बचाएंगे हैं? उसने भगवान को नहीं बुलाया था, बेटा को बुलाया था, फिर भगवान विष्णु दूत तक भेज देते हैं। अगर आप राधा वृंदावन के सामने उनको गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए बुलाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या भगवान आपको रक्षा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे है? भगवान जरूर करेंगे। इसलिए हमको हर रोज थोड़ा समय निकालकर एक माला जप तो हमको करना चाहिए। ये हरे कृष्णा मंत्र को महामंत्र बोला गया है। शास्त्रों में बहुत सारा मंत्र है लेकिन इस मंत्र को महामंत्र बोला गया। खास करके 108 उपनिषद है, जो कली युग का जो उपनिषद है उसको क्या बोलते हैं, कली संतरण उपनिषद। खास करके हमारे लिए कलयुग मंद सुमंद मत भाग्य जो लोग हैं, कलयुग के लोग ज्यादा गर्व करते हैं कि अरे हमारा ये स्टेटस है, कलयुग मतलब सबसे मंद भाग्य है। जो सत्ययुग में अटक गया, त्रेता युग में अटक गया, द्वापर युग में अटक गया, 3 बार स्कूल में फेल हो चुके हैं, अभी 4th बार चालू है, टीचर बोल रहा कैसे तो पास करो यार इनको, अभी ये कंडीशन है कलयुग का। तो इसमें बहुत सरल माध्यम दिया गया है पास होने का। क्या बोला गया कली संतरण उपनिषद में, इति षोडशकम नामना कलिकल्मषनाशनम नतपरतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशकम नामना, ये 16 अक्षर का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 4 × 4 = 16। इति षोडशकम नामना कलि कल्मषनाशनम, कलि का जो भी कल्मष है वो नष्ट हो जाएगा। घर घर में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, सास बहू में झगड़ा होता है, लोकल ट्रेन के अंदर झगड़ा होता है, कहाँ झगड़ा नहीं होता है। इसलिए नाम है कलियुग, झगड़ा मतलब कलियुग। लेकिन कली कलमश नाशनम, कली का जो कलमस है, जो इफेक्ट है, उसको नष्ट कर देता है। जैसे जिस घर में संकीर्तन होता है वो घर में झगड़ा कम होता है, कम होता है ना के बराबर होता है। कली कलमसनासनम न तपरतर उपाय, कोई बोलेगा प्रभु और कुछ मैं कर लूंगा ना, और कोई उपाय नहीं कलयुग में। सर्ववेदेषु दृश्यते, यही है सारा वेद का सार है बोल के भगवान बोल रहे हैं। ये नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में संवाद चल रहा है, तो अगला श्लोक में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये श्लोक कौन सा मंत्र है, 16 अक्षर का मंत्र, ये मंत्र कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को महामंत्र बोला गया। देखिए कलयुग में जो भी पूजा पाठ यज्ञ करते हैं अंत में इस मंत्र को जाप करना पड़ेगा, नहीं तो पूजा संपन्न नहीं होगा। आप लोग महाराष्ट्र में सुने रहेंगे, देखे रहेंगे, गणपत पूजा होता है तो अंत में बोलते हैं ना हरे राम, सब घूमना चालू कर देते हैं। एंडिंग में ये मंत्र बोलना ही पड़ेगा, हवन हो यज्ञ, क्योंकि यही महामंत्र है। इसलिए आप जब इस्कॉन में आते हैं, हरे कृष्णा में आते हैं, तो लोग पूछते हैं अरे महाराज ये हरे कृष्णा इस्कॉन में क्यों करते हैं? अरे बाबा इसलिए करते हैं क्योंकि यही महामंत्र है। अगर यही महामंत्र है तो डायरेक्ट क्यों जप नहीं करें, इनडायरेक्ट क्यों एक बार जप करें, पूरा जप करो ना उसको, कीर्तन में करो, जप में करो। इसीलिए हम हरे कृष्णा मंदिर में हर रोज हम क्या करते हैं, एक माला जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा माला जप करते हैं। सबको ऐसा माला जप करना चाहिए। घर में एक माला करने के लिए 10 मिनट लगेगा। भगवान ने 24 घंटा दिया है, क्या क्या नहीं करते हैं। 10 मिनट अगर भगवान को दिया तो भगवान का हाथ आपके ऊपर 23 घंटा 50 मिनट रहेगा, और आपका हर समय भगवान आपका मदद करने के लिए रहेंगे। तो जिनको भी जप करना है, प्रोग्राम होने के बाद नीचे हमारा गिफ्ट शॉप रहेगा, उसमें माला मिलेगा, आप माला लेके हरे कृष्णा मंत्र हर रोज एक माला जप कीजिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा आपको बड़े से बड़े संकट से आपको बचाएगा। त्रायते महतो भयात, जैसे अजामिल यमदूत लेके जा रहे हैं उससे बचाया, सोचो अगर आप हर रोज 10 मिनट देंगे तो कैसे संकटों से आपको मुक्ति मिलेगा। इसलिए आप इस माला लेके हर रोज एक एक माला जप कीजिए, ठीक है। सी फॉर चैंटिंग एंड डी फॉर डॉग, डी फॉर क्या, डाइट। डाइट मतलब क्या है, मेडिसिन अगर आप खाते हैं जाके, कुछ अगर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन खाएंगे खास करके, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको डाइट देते हैं कि ये गोली आपको गर्म पानी में खाना है, इसके साथ खट्टा नहीं खाना है, पथ्य रहता है। उसी प्रकार का आध्यात्मिक जगत का जो मेडिसिन अभी आप खा रहे हैं, चैंटिंग खा रहे हैं ना, मेडिसिन करेंगे तो उसके साथ पत्ते भी रहता है, क्या करेंगे तो बहुत अच्छे से मेडिसिन काम करेगा, नहीं तो पूरा करोगे बोलोगे यार कैसा डॉक्टर दिया, कुछ मेडिसिन काम नहीं करता है, बकवास डॉक्टर दिया, वो बोला है गर्म पानी में खाओ, तुम ठंडा फ्रिज से पानी से खा रहा है मेडिसिन, कैसे काम करेगा मेडिसिन। तो डाइट मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। हमको शुद्ध सात्विक आहार लेना है, भगवान गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते, भगवान नहीं बोल रहे अंडम मछलियम चिकनम, भगवान क्या बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान बोल रहे हैं। कोई कोई बोलते गीता में अरे किधर बोला है भगवान नॉन वेज नहीं खाने का, अरे बोल रहे हैं ना भगवान यहाँ पर वेजिटेरियन खाओ बोल के, पत्ता खाओ, फूल खाओ, पत्ता गोभी खाओ, आलू खाओ, फ्रूट्स खाओ, इतना सारा वेजिटेरियन है, सात्विक है, इसको घर में लेके आओ और बनाओ और भगवान को भोग लगाओ, और भोग जब लगाते हैं तो दो चीज नहीं डालने का उसमें, क्या नहीं डालने का, कांदा लहसुन नहीं डालने का, क्योंकि वो तामसिक है। और भगवान को भोग लगोगा एक तुलसी का पत्ता डालो, थोड़ा घंटी बजाओ, हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोलो, 5 मिनट छोड़ दो, हो गया, सिंपल हो गया प्रसाद। और उसको लाओ, राइस को राइस के टोप में डालो, दाल को दाल में डालो, सब्जी को सब्जी डालो, आपका पूरा प्रसाद हो गया घर में, सब लोग प्रसाद घर में खाएंगे। देखो ऐसा आप 1 महीना करके देखो, आपके घर में पूरा वातावरण बदल जाएगा, पूरा घर में एक वैकुंठ का वातावरण आ जाएगा। ये मेरा एक आपको सुझाव है, खुद करके देखिए, 1 महीना ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो बदल दीजिए बाद में, ट्राई करके देखो, घर में पूरा वातावरण, कोई चिड़चिड़ हो रहा है तो शांत हो जाएगा, झगड़ा चल रहा है तो कम झगड़ा होगा, और सबके मन में आनंद आएगा। तो ये आज हमने चर्चा किया, ए बी सी डी, ए फॉर क्या था, एसोसिएशन, भक्तों का जब संग करते हैं तो हमारा क्या होता है, अहंकार शुद्धि होता है और एक साथ भक्ति में आगे बढ़ते हैं। बी फॉर बुक्स, जब बुक्स पढ़ते हैं उससे बुद्धि हमारा शुद्धिकरण होता है। सी फॉर चैंटिंग से हमारा चित्त, हमारा मन शुद्धिकरण होता है। डी फॉर डाइट, डाइट से हमारा पूरा देह शरीर शुद्धिकरण हो जाता है। इस प्रकार ये 4 चीज को याद रखिए, ए बी सी डी, हर रोज इसको अपने जीवन में कीजिए और आपका मनुष्य जीवन सफल कीजिए। हरे कृष्णा,
हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु, प्रभु जी ने बहुत ही अच्छी तरह हमें एबीसीडी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान की भक्ति का एबीसीडी पढ़ाया। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी इसके पश्चात श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा, उसमें आप डांसिंग कीर्तन करते हुए भाग ले सकते हैं। उसके पश्चात 12:30 बजे सबके लिए लंच प्रसाद की व्यवस्था है। जिन भक्तों को कूपन मिले हैं उनके लिए एक अलग कतार है, क्यू है, और जिनको कूपन नहीं मिला है उनके लिए भी लंच प्रसाद की व्यवस्था है। ललिता भवन में सबके लिए प्रसाद होगा। तो हम सबसे विनती करते हैं कि आरती में भाग ले। हरे कृष्णा।